हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका की बात सुनकर करण ने कुछ पल तक हैरानी से उसकी ओर देखा, पर फिर बोला, कौन सी प्रॉब्लम? मेरी वजह से? क्या प्रॉब्लम है बताओ शिविका? शिविका ने एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, कैन यू प्लीज जस्ट लीव नाउ, मुझे तुमसे इसमें कुछ भी बात नहीं करनी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी काम है अभी। करण ने एकदम मायूसी से कहा, हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए वैसे भी कभी जरूरी नहीं रहा। करण की ये बात सुनकर शिविका ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा। करण उस वक्त बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। उसे देखकर शिविका असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया उसने ऐसा क्या कहा, और वैसे भी इस वक्त करण से नाराज, निराश और गुस्सा तो वो भी थी, इसलिए उसे करण की नाराज़गी नज़र नहीं आई। इसलिए उसने कोई सफाई नहीं दी, और वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही करण वहाँ से चला गया। शिविका वहाँ से जाते हुए करण को देख रही थी। उसे दूर जाते हुए करण की पीठ नज़र आ रही थी। वो बहुत असमंजस में थी। सुबह से ही उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने खुद ही उसे वहाँ से जाने को कहा था। पीछे से एक लड़की की आवाज़ शिविका के कानों में पड़ी, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या किसी बात पर? वो आवाज़ सुनते ही शिविका ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर हर्षिता खड़ी थी। उसने शायद अभी अभी उनके बीच हुई बात सुन ली थी, फिर शायद करण को वहाँ से जाते हुए देखा था, इसलिए ये सवाल पूछ रही थी। फिर भी शिविका ने उसकी बात पूरी तरह से टालते हुए कहा, लड़ाई? लड़ाई किस बात पर? और करण, वो तो वैसे भी मेरा असिस्टेंट है ना? हर्षिता ने उसकी बात पर कहा, हाँ, मुझे पता है वो आपका असिस्टेंट है, लेकिन आप मुझे ये फिर से क्यों बता रही हो? वो करण तो इस तरह से वहाँ से चला गया, बस इसलिए मैंने पूछा। हर्षिता की बात सुनकर शिविका ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे, वो तो मैंने ही उसे वापस उसके घर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो कल सुबह से ही यहाँ पर हॉस्पिटल में है मेरे साथ। शिविका की बात सुनकर हर्षिता ने कहा, अच्छा, शायद इसीलिए उसका चेहरा ऐसा लग रहा था, ज़रूर वो थका हुआ होगा, यहाँ हॉस्पिटल में कहाँ नींद आती है। हर्षिता की इस बात पर शिविका ने बस हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि करण के उदास चेहरे के पीछे के कारण को वो जानती थी, और वो हर्षिता से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। कुछ देर बाद हर्षिता, दिनेश अंकल और शिविका तीनों ऋषभ के हॉस्पिटल रूम में थे। तभी दिनेश अंकल वहां से बाहर चले गए ऋषभ के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऋषभ की हालत में काफ़ी सुधार है और अब उसे बुखार भी नहीं है, इसलिए आज वो उसे घर ले जा सकते हैं। शिविका वहां पर एकदम खोई हुई सी बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन शिविका का ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन हर्षिता और ऋषभ दोनों ने एक साथ ही दरवाज़े से अंदर आने वाले शख्स को देखकर कहा, तुम यहाँ? दरवाज़े से अंदर आने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि समर था, करण का छोटा भाई। वो ऋषभ से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि कल जो यहाँ से गया था तब ऋषभ को होश भी नहीं आया था, और करण ने उससे कहा था कि वो कल सुबह आकर सबसे मिल सकता है। ऋषभ और हर्षिता दोनों ही समर को जानते थे, लेकिन उन दोनों को ही समर के इस वक्त वहाँ पर होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे समर को दरवाज़े पर देखकर थोड़ा सा चौंक गए। समर ने उन दोनों के सरप्राइज रिएक्शन को देखते हुए बोला, रिलैक्स गाइस, तुम दोनों ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और हर्षिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी ऋषभ को जानते हो क्या? हर्षिता ने एकदम आराम से उसकी बात का जवाब दिया, ऋषभ भाई तो मेरे कज़न हैं, और मैं तो फ़िलहाल इनके घर पर ही रुकी हुई हूँ, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानते हो? उन लोगों की बातें और आपस के सवाल सुनकर पीछे से शिविका ने बोला, अरे, ये करण का छोटा भाई है। शिविका की बात सुनकर ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, पता है मुझे, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है दी। शिविका ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं तो हर्षिता को बता रही हूँ ऋषभ। ऋषभ ने हर्षिता और समर की ओर बारी बारी से देखते हुए पूछा, तुम दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को पहले से? हर्षिता समर की तारीफ करते हुए बोली, ऋषभ भाई, वो एक्चुअली समर ने मेरी बहुत हेल्प की थी उस दिन, ही इज़ सच अ नाइस गाय। उसकी तारीफ सुनकर समर ने थोड़ा सा असहज महसूस किया, और उसने बात बदलते हुए ऋषभ से पूछा, अरे नहीं, इतनी भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की थी, वो तो बस, वैसे तुम्हें क्या हुआ था ऋषभ, अब कैसा फील कर रहे हो, और तुम इस तरह से कैसे बेहोश हो गए थे, वो भी रास्ते पर? समर को सच में भी ऋषभ की काफ़ी फ़िक्र थी। ऋषभ ने एकदम लापरवाही से कहा, पता नहीं कैसे बुखार था शायद, और कार खराब हो गई तो मैं पैदल ऑफिस जा रहा था, और वही, वैसे थैंक्स, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। ऋषभ ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर उसे थैंक्स बोला, लेकिन समर का मुंह बन गया और उसने कहा, वैसे इस थैंक्स के लिए तो नहीं की थी हेल्प, बट इट्स ओके। हर्षिता के भी उन दोनों को नोटिस करते हुए पूछ लिया, सो यू आर गुड फ्रेंड्स? समर एकदम से बोला, नो। ऋषभ भी उसके साथ ही बोला, यस। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन उन दोनों के जवाब अलग थे, तो ऋषभ ने थोड़ी मायूसी से अपना जवाब बदलते हुए कहा, आई मीन नो, नॉट येट। समर ने भी उसकी बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मतलब हो सकते हैं। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर हर्षिता अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, शक्ल देखा तुम दोनों की, मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया। वैसे पहले से जानते हो एक दूसरे को, तो मुझे लगा दोस्त होंगे। वे तीनों आपस में बात कर रहे थे और हर्षिता और समर के वहाँ पर होने की वजह से ऋषभ भी अब पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल की दीवारें और छत देखकर तो वो जैसे और ज़्यादा बीमार फील करने लगा था। इसी बीच दिनेश अंकल वहां पर आ गए और कुछ पेपर्स पर उन्होंने शिविका से साइन करवाया और फिर ऋषभ का डिस्चार्ज होते ही वे सब एक साथ वहां से निकले। समर उन सबके साथ हॉस्पिटल के गेट पर आया। उसे करण वहां पर कहीं भी नजर नहीं आया, तो वो समझ गया कि जरूर करण घर वापस चला गया होगा, इसलिए उसने किसी से भी करण के बारे में नहीं पूछा और फिर उसके सामने ही ऋषभ अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। और उसके वहां से जाने के बाद समर भी हॉस्पिटल से सीधा अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकल गया, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल आने की वजह से उसका कॉलेज तो आज मिस हो गया था। कुछ दिनों बाद उस घटना के बाद से शिविका और करण दोनों का ही एक दूसरे से आमना सामना नहीं हुआ था और शिविका का पैर अब बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी वो ऑफिस आना टाल रही थी, क्योंकि उसे पता था ऑफिस आते ही उसका करण से सामना होगा और पिछले एक हफ्ते में उसने एक बार भी करण को घर पर किसी भी काम के लिए नहीं बुलाया। उसकी जगह पर वो जतिन या दिव्या में से किसी को बुला लेती थी अगर बहुत ज़रूरत हो तो। करण का मन भी शिविका और काव्या से मिलने का हो रहा था, साथ ही उसे ऋषभ की भी थोड़ी फिक्र थी, लेकिन जब भी वो खुद से उसके घर जाने के बारे में सोचता तो उसके दिमाग और कानों में शिविका के कहे शब्द गूंजने लगते और करण की आत्मगौरव आगे आ जाती और शिविका को इतना मिस करने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं जा पाया। इस बीच उसे ऑफिस में तो ज्यादा काम नहीं था, लेकिन घर पर उसकी शादी तो लेकर बात चलती रहती थी और उसे तो अपना और शिविका का कोई रिश्ता, कोई भविष्य साथ में नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए इस बात से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था। वृंदावन मैंशन।
शिविका के पापा ने ये बात नोटिस की कि पिछले एक हफ्ते में करण एक बार भी घर नहीं आया है और शिविका ऑफिस तो नहीं जा रही है, लेकिन बाकी क्लाइंट मीटिंग में वो चली जाती है जब भी जरूरी होता है। इसलिए शिविका के पापा ने उससे बात करने के बारे में सोचा और वे अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए घर के हॉल में ही शिविका का इंतजार करने लगे। शाम के वक्त शिविका दिनेश अंकल के साथ घर के अंदर आई। वो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, क्योंकि करण के बिना अब उसे अपने ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते थे। करण की वजह से उसकी आदत बिगड़ गई थी, क्योंकि करण अपने काम में काफी अच्छा था और उसकी जरूरत की सारी चीजों का ध्यान रखता था। उसकी सारी मीटिंग पहले से ही अरेंज कर देता था, उसका शेड्यूल सब कुछ उसे मेल कर देता था और इसके अलावा जो भी जरूरी फाइलें डॉक्यूमेंट होते थे वो बोलने से पहले लैपटॉप फोन में वो मेल कर देता था, जिसकी वजह से उसे खुद से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था और ना ही ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती थी। दिनेश अंकल भी अपनी तरफ से पूरा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिविका उनसे सब कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा है और वो उनकी इज्जत करती है, लेकिन अकेले जाने की वजह से उन्हें अपने साथ लेकर गई थी, जबकि सारा काम उसने खुद ही देखा था। घर के अंदर आते ही शिविका ने अपनी हील्स उतार कर वहीं साइड में रखी और पैर ऊपर करके सोफे पर आराम से बैठ गई और उसने एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। अपनी व्हीलचेयर शिविका की ओर बढ़ाते हुए शिविका के पापा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, और तुम दिनेश को अपने साथ क्यों लेकर गई थी? करण छुट्टी पर गया है क्या? करण का नाम सुनते ही शिविका एकदम से हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, करण का मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है वो ऑफिस में होगा और मुझे अर्जेंट एक मीटिंग में जाना पड़ा, तो दिनेश अंकल घर पर ही थे इसलिए मैं उनके साथ चली गई। शिविका के पापा ने बड़े ही आराम से पूछा, करण भी तो घर पर आ जाता था जब तुम उसे काम के लिए बुलाती थी, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? आज नहीं, पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, जब से हॉस्पिटल से वापस आई हो वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आया। कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई गलतफहमी? शिविका उनकी बात सुन सुनकर एकदम ही अपनी जगह पर उठकर खड़े होते हुए बोली, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा हमारा डैड? आप सबको ऐसा क्यों लगता है? और वैसे भी वो ऑफिस में अपना काम कर रहा है, मैंने उसे घर नहीं बुलाया, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? शिविका को ऐसा रिएक्ट करते देख उसके पापा ने कहा, अरे क्या हुआ शिविका, और मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया? और अगर तुम दोनों के बीच सब ठीक है तो फिर तुम इस तरह से क्यों नाराज हो रही हो? जरूर कोई तो बात है। शिविका ने फिर से उसी तरह गुस्से से कहा, हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है हमारा, और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, ना ही उसके बारे में, बस खुश यही सुनना चाहते थे ना, अब ठीक कर दीजिए सब। इतना बोलकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई, और उसके वहाँ से जाने के बाद शिविका के पापा ने वहाँ पर खड़े दिनेश की ओर देखा। क्रमशः